hare rama 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 hare hare जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की आप सबको बधाई हो। हैप्पी बर्थडे लॉर्ड श्री कृष्ण का आज हम मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभेचरणार भक्तिवेदान स्वामी श्री प्रभुपाद के संस्था के भक्तों की तौर से आज जन्माष्टमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। वैसे जन्माष्टमी के आगे कृष्ण लगाएंगे तब पूरा शब्द होगा। जन्म मतलब जन्म होना, अष्टमी का मतलब आठवें दिन, लेकिन किसका? कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इसका दूसरा नाम है गोकुल अष्टमी। क्यों? क्योंकि ये उत्सव पहले गोकुल में मनाया गया। ये उत्सव पहले कहां मनाया गया? भगवान श्री कृष्ण के जन्म का गोकुल में। नंद के घर आनंद भयो, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये उत्सव पहले आज से 5200-300 साल पहले गोकुल में मनाया गया, इसका नाम गोकुल अष्टमी है। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। आपने बहुत से जन्म लोगों के जन्मदिन पे तो गए हो ना, बर्थडे पे। हाँ जी, कितने लोग आते होंगे? ज्यादा से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर का जगह जन्मदिन हो तो कितने लोग आएंगे? कितने देशों में मनाया जाएगा? अपने देश में जिस देश का प्राइम मिनिस्टर होगा बस ना, उस देश के कुछ लोग आएंगे। आज दुनिया के हर देश में, एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और हर दुनिया के हर देश के हर बड़े शहर में इस्कान के भक्तों की ओर से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और आज इंग्लैंड में नहीं तो भी 100,000 पीपल से ज्यादा लोग आके भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का दर्शन करेंगे। भारत में केवल एक बॉम्बे के राधा रास बिहारी मंदिर में मोर देन 400,000 पीपल लाइन में खड़े हैं दोपहर को 12 बजे से और कल सुबह 4 बजे तक, और ऐसा ही दिल्ली आदि पूरे भारत के। तो इतना बड़ा विशाल जन्म उत्सव किसी का कभी सुना है? सिर्फ भगवान का हो सकता है, किसी आदमी का नहीं हो सकता है। ये एक बात सिद्ध करती है कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान है। पूरे विश्व के लोग जो उनसे प्रेम करते हैं उनका जन्मदिन मनाते हैं। ये बात समझ में आती है? ये सत्य है कि नहीं है? इतना बड़ा उत्सव कहीं नहीं। आपके इस छोटे से आइलैंड मॉरिशस के ऊपर देखो, इसके इधर देखो, आज फिनिक्स के अंदर 25,000 से ज्यादा लोग लाइन में खड़े हैं दर्शन करने के लिए, और बुनाके में इतने ही 25,000 से ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए 20,000 खड़े हैं लाइन में, जाने का रास्ता नहीं मिलता है। तो आपके देश में इतने उत्सव के साथ इसके अलावा और कई जगहों पे फ्लैग के अंदर जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो इतने चारों ओर जन्माष्टमी का, इतना भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव आपके देशवासी मना रहे हैं, आप भाग्यशाली हो। आपके पूर्वज जो है ये धन अपने साथ लाए थे और छुपा हुआ था, दया करो। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की और श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ आपके देश में आए, और आपके छुपे हुए धन कृष्ण भक्ति जो आपके हृदय में आपके साथ आई थी उसको जागृत कर दिया। और फिर ऐसे श्यामा प्रभु और विष्णु प्रभु ऐसे और भक्त सारे मॉरिशस में नहीं तो भी 10,000 से ज्यादा, ये कृष्ण भक्ति के इस आंदोलन का अति विराट रूप में इस आइलैंड के ऊपर श्री कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव को मनाने का आयोजन करते जा रहे हैं, और बड़े बड़े लोग इसमें लाभ ले रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि आज मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एमबीसी शाम को 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक लाइव इस्कान की जन्माष्टमी दे रही है, घर घर में देखा जा रहा है। जो लोग मंदिर नहीं आ सकते हैं वो भी देख रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहा है। तो कितना बड़ा विशाल और विराट भगवान का ये जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? इस भगवान के जन्म उत्सव की हमें जानकारी देने की कृपा किसने की? भारत के बहुत बड़े महान सम्राट परीक्षित महाराज। भारत उस स्थान का नाम नहीं है जो आज आप मैप के ऊपर छोटा टूटा फूटा देखते हो, जिससे बर्मा भी अलग हो गया, जिससे पाकिस्तान भी अलग हो गया, जिससे बांग्लादेश भी अलग हो गया। वो भारत जिसके ऊपर परीक्षित महाराज ने राज किया, जिसके पितामह युधिष्ठिर धर्मराज की स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, वो भारतवर्ष इस भूरे भूमि का नाम था। इस भूरी भूमि को भारतवर्ष कहते थे। ये तो मूर्खों ने काट पीट के अपना अपना भाग बना के भोग का ऐसा वातावरण बनाया है, कोई दुनिया में सुखी नहीं। ऐसा सम्राट परीक्षित महाराज, उसने प्रश्न पूछा है किससे? साधु संतों महात्माओं में श्रोमणि सुखदेव गोस्वामी से। 16 साल का नौजवान है और परीक्षित महाराज गंगा के तट पे बैठे हैं, व्यासदेव बैठा है, उनके गुरु नारद बैठे हैं, पराशर व्यास के पिताजी बैठे हैं, अगस्त मुनि अत्रि मुनि और सारे ऋषि मंडली बैठी है। नौजवान 16 वर्ष के सुखदेव को आज के देख के सब खड़े हो गए, स्वागत किया व्यास और नारद को छोड़ के और आसन के ऊपर विराजमान करके। और परीक्षित पूछता है कि भूत भावन सर्व आत्मा, जो सबका भला चाहता है। भूत भावन का मतलब जिसकी भावना सारे प्राणियों का कल्याण है, जो सबकी शुभ चिंतक है। ईश्वर सर्वभूतानाम सुहृद, सारे प्राणियों का जो सुहृद है, मित्र है, शुभ चिंतक है और जिससे सब प्रेम करते हैं और जो सबसे प्रेम करता है, उस भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी सारी लीलाओं का आप कृपा करके विस्तार से वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण के इस जन्म उत्सव का हम सबको जानकारी देने की कृपा किसने की? परीक्षित महाराज ने। परीक्षित महाराज से पहले युधिष्ठिर महाराज की सभा में श्री कृष्ण बैठे थे, पांडव 4 भाई और भी बैठे थे, ऋषि मुनि बैठे थे, सत्संग हो रहा था। मार्कंड्य ऋषि वहां प्रकट हुए। मार्कंड्य ऋषि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की है तब से हैं, लगते तो नौजवान हैं और कई प्रलय देख चुके हैं, कई ब्रह्मा जी के जन्म से अभी तक जीवित हैं। उसको आते हुए देखकर युधिष्ठिर महाराज ने प्रार्थना करके कहा, मार्कंड्य ऋषि आपने कृपा करके यहाँ दर्शन दिया है, हमें वो बताइए भगवान जिसका हम शरण लें और हमारा उद्धार हो। और मार्कंड्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप मुझसे ये पूछ रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। एक बार भगवान का मैंने दर्शन किया और पूछा कि मुझे प्रलय का दर्शन करना है और मेरे बैठे बैठे भगवान की माया के दर्शन की क्या मैंने इच्छा की नर नारायण से? नर नारायण भगवान ने माया ऐसी की कि मैं प्रलय के जल में तैर रहा था तो सामने दूर एक पत्ते के ऊपर एक बच्चे को देखा, तो मैं देखा ये तो नारायण नहीं है, चतुर्भुज तो नहीं है, कौन है? नजदीक जाके देखा तो पत्ते के ऊपर एक छोटे सांवले से बालक थे और अपने ही पांव का अंगूठा मुंह में लेके चूस रहे थे। ये एक चित्र पड़ा है यहाँ मेरे पते ना, ये पड़ा है श्यामा, ये हमारे मित्र के जी वार्षण हरिद्वार से पधारे हैं, ये चित्र अभी सांबा को दिया है सुंदर। ये चित्र मार्कंड्य ऋषि ने देखा और कहने लगे, मार्कंड्य जी मैंने देखा वो पांव का अंगूठा अपना चूस रहा है। बोला क्यों चूस रहा है? बोला इसलिए चूस रहे हैं कि सारे भक्त भगवान के चरणों को चाहते हैं, लक्ष्मी भगवान के चरण नहीं छोड़ती, भगवान के चरण को छोड़ के लक्ष्मी कहीं नहीं जाती, सारे दुनिया वाले लक्ष्मी के पीछे भागते हैं और लक्ष्मी भगवान के चरणों को पकड़ के बैठती। तो भगवान कहते हैं इन चरणों में क्या रस है, क्या आनंद है, मैं तो थोड़ा टेस्ट करके देखूं। और भगवान अपने चरणों को, और मार्कंडे कहते हैं मैंने देखा इनको और मैं देख रहा हूं इतनी देर में उन्होंने सांस लिया अंदर और मैं उसके पेट में चला गया और उनके पेट में मैंने अनंत कोटि ब्रह्मांड देखे और अनंत कोटि ब्रह्मांड देखे, पूरी दुनिया उसमें समाई है और सांस बाहर निकाला, मैं बाहर आ गया, मैं उनको प्रणाम किया। तब एक बहुत सुंदर श्लोक इसके लिए बोला है, करार विंदे पदार विंदम मुखार विंद, करार विंदे हाथ कमल, अरविंद कहते हैं कमल को, कर कहते हैं हाथ को, करार विंदे पदार विंदम अपने पद कमल चरण कमल को अपने हस्त कमल से लिया है, मुखार विंदम अपने मुख में डाला है, वटस्य पत्रस्य पूटे स्यानम बालम मुकंदम मनसा स्मरामी। ये बाल मुकंद एक वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर सोया उस प्रलय के जल में ऐसे तैर रहा था। और ये कहकर मार्कंडेय कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, ये जो कृष्ण जिसको आप अपना भाई मान रहे हो, सखा मान रहे हो, संदेश वाहक मान रहे हो, पार्थ का सारथी मान रहे हो, यही वो मैंने देखा था प्रलय के समय। ये आदि पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। ब्रह्मा कहता है ये आदि पुरुष है, परिपूर्ण अवतार है। अगर भगवान अवतार नहीं ले हैं तो हमें क्या पता कि भगवान है भी कि नहीं है। भगवान प्रकट होते हैं तब हमको पता लगता है कि भगवान कौन है। फिर अवतार की श्रेणियां हैं, कैसे कैसे अवतार होते हैं, 6 प्रकार के अवतार होते हैं, लेकिन सारे अवतार प्रायः भगवान विष्णु से आते हैं। लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण अवतारी पुरुष है। बस ये आपको आज हम और 20 मिनट में बताने का प्रयास करेंगे। और ये कथा कौन बता रहा है? ये कथा स्वयं श्री कृष्ण बता रहा है। लेकिन कृष्ण आज किस रूप में आए हैं? भक्त के रूप में आए हैं, क्योंकि भगवान अपने बारे में कितना बताएगा, फिर संकोच करेगा कितना इनको बताऊं मेरे बारे में। लेकिन भक्त भगवान के बारे में जैसे अनंत शेष, जिसने मुख है उतना भगवान की महिमा गाता है, तब भी नहीं थकता और महिमा पूरी भी नहीं होती। तो भगवान के भक्त के रूप में जब श्री कृष्ण आए, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में, तो उस वक्त के मुख्यमंत्री बंगाल के राजपाट का परित्याग करके वृंदावन में साधु बनकर आए, उनको शिक्षा देते हुए बनारस में, बनारस वाराणसी में, वाराणसी में गंगा जी जहां बहती है, जमुना जिससे मिल जाती है, और गंगा जमुना सरस्वती तीनों गंगा के नाम से आगे बहती है, वहां चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, कृष्ण अनंत गुणों की खान है, माइन ऑफ अनलिमिटेड ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। फिर भी संतों ने 64 क्वालिटीज मुख्य मानी है, 64 गुण। और फिर महाप्रभु कहते हैं 50 गुण गिनाए सुंदरता से लेके हर एक, और फिर कहा ये 50 गुण जो हैं ये तो जीवों में भी होते हैं। हम सब में से दुनिया में जितने भी ऐसे ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें अंश मात्र मीन्स ए फ्रैक्शन ऑफ 50 क्वालिटीज ऑफ गॉड में मैनिफेस्ट, और किसी में 1, किसी में 10, किसी में 50 होते हैं। कोई कितना सुंदर होता है कभी, उसको फिर कहते हैं मिस वर्ल्ड, इसकी सुंदरता पूरी दुनिया में, ये बहुत सुंदर है, ये दुनिया का सबसे रिच मैन है, ये सबसे बलवान बॉक्सर है। तो ये जो जीव के अंदर भी अंश मात्र 50 गुण जो भगवान में है वो हो सकते हैं, लेकिन भगवान में अनंत है। जैसे समुद्र कितना बड़ा है, उसमें से एक पानी का ड्रॉप लेके आओ, उसका एनालिसिस करो, तो उसमें भी उतना परसेंटेज साल्ट का होगा जितना समुद्र में है। लेकिन समुद्र अनलिमिटेड है। एक और सुंदर उदाहरण दें, गंगा जी का जल आपके यहाँ, आप जब भारत जाते हैं हरिद्वार तो गंगा जल लाते हैं, आपके घर में बोतल में गंगा जल होता है, आप कहते हैं ये गंगा है, तो वो गंगा तो है, लेकिन उस गंगा जल में और जो हरिद्वार में गंगा बहती है, हर की पेड़ी, इसमें क्या अंतर है? हर की पेड़ी की बहती गंगा में हजारों लोग स्नान करते हैं, कई मछलियां तैर रही हैं, कई लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपकी बोतल का गंगा जल है तो गंगा जल, लेकिन उसके अंदर कोई स्नान नहीं कर पाएगा, उसके अंदर और जीव नहीं रहते हैं। ऐसे हम जीव बोतल के पानी जैसे गंगा जल है, है तो गंगा जल है, तो भगवान का अंश, लेकिन भगवान के समान नहीं है। तो 50 गुण जैसे जीव में अंश मात्र, वो अनंत भगवान में। फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन 5 गुण और हैं जो जीवों में नहीं होते, हम में नहीं है। वो किसमें है? ग्रीस आदि, ग्रीस कहते हैं भगवान शंकर को, भोलेनाथ ग्रीस में और अन्य देवताओं में भी 5 और गुण हो सकते हैं, विशेष रूप से भगवान शंकर में, जो और किसी इंसान में नहीं होते। और वो 5 गुण क्या है? सदा स्वरूप संप्राप्त, अपने स्वरूप में सदा रहते हैं। जैसे हम तो जवान बच्चे थे, बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे थे जवान हुए बूढ़े हो जाएंगे, तो हमारा स्वरूप तो बदल गया और फिर मरने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। शंकर जी सदा अपने स्वरूप में रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन ना नहीं आता है। कभी बूढ़ा शंकर जी का फोटो भी नहीं देखा होगा, वो तो सदा जैसे हैं ऐसे ही अलख में रहते हैं। तो सदा स्वरूप में स्थित होते हैं। और दूसरा सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, उनकी जानकारी में कोई कमी नहीं है, वो त्रिकालदर्शी हैं। और तीसरा नित्य न्यूतन, सदा के लिए, न्यूतन कहते हैं ताजा, नौजवान, तरुण, जिसमें कोई चेंज नहीं आती है, एक जैसा सदा रहता है, नित्य न्यूतन और रोज नया। रोज जाओ उनके पास तो रोज आनंद आता है। और ये कितने हो गए? सदा स्वरूप में स्थित, दूसरा क्या बताया, सर्वज्ञ, तीसरा नित्य नूतन, चौथा सच्चिदानंद, उनका जो जो शरीर है हमारी तरह हार्ड का, मांस का, मज्जे का नहीं बना हुआ है, स्किन ऐसे हमारे जैसी नहीं है, हड्डियां हमारे जैसी नहीं है, वो पूरे का पूरा शरीर सच्चिदानंदमय है। वो शरीर मरता नहीं, हमारा शरीर तो बेचारा टूट जाता है, आत्मा अमर है, वो पूरे का पूरा सच्चिदानंद उनका विग्रह। और पांचवी चीज उनके अंदर है सर्व सिद्धि निवेश, सारे योग की सिद्धियां उनमें है, जब चाहे जो चाहे कैसे चाहे सब कर सकते हैं, वो योगेश्वर है। तो ये 5 गुण जीवों में नहीं है, शंकर जी में है, लेकिन कितने हैं? अंश मात्र। जैसे जीवों में 50 अंश हैं, ये 5 गुण 50 से ऊपर शंकर जी में तो हैं, लेकिन श्री कृष्ण में ये 5 गुण अनंत हैं और शंकर जी में ये सीमित हैं। ये कितने गुण हो गए? 5 और 50, 55। अब आगे कहते हैं श्री कृष्ण, इससे आगे 5 गुण हैं जो किसमें होते हैं? लक्ष्मी ईश, लक्ष्मीपति नारायण में एक 5 गुण होते हैं जो शंकर आदि देवताओं में नहीं होते, जीवों में तो हो ही नहीं सकते हैं। तो वो 5 कौन से गुण हैं जो नारायण में होते हैं, वे कुंठपति में होते हैं? पहला गुण है, सुन लीजिए, अचिंत्य महाशक्ति। उनकी जो शक्ति है वो अचिंत्य है, हम सोच भी नहीं सकते, ये जगत जो है वो उनकी शक्ति है, प्रकृति है जो ये जगत चला रही है। तो अचिंत्य शक्ति का वो आगार है। और दूसरा उनका ऐसा गुण है, वो है कोटि ब्रह्मांड। उनके एक एक हेयर की जो हमारे रोम कोप है ना, पर इट्स कॉल्ड द स्किन पोर्स इन द स्किन, स्किन पोर्स इन द स्किन, एक एक पोर से हमारा पसीना निकलता है ना, जैसे गर्मी में पसीना निकलता है ना, ऐसे भगवान के एक एक पोर से एक ब्रह्मांड निकलता है। ये एक ब्रह्मांड हमारा इतना छोटा है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। आपको सिर्फ मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अपने यहाँ भी दिसंबर में थोड़ी गर्मी होगी तो बाहर जाएंगे पोर लिस्ट में तो पसीना होगा कि नहीं होगा, और उस पसीने की एक बूंद में कितने कीटाणु होते हैं। डॉक्टर किसी को पास जाके देखो तो ईच ड्रॉप ऑफ द स्वेट कंटेन अनलिमिटेड लिविंग एंटिटीज, वायरस बैक्टीरिया, इज इट राइट डॉक्टर साहब? डॉक्टर बैठे जेगा बाय उससे पूछ लो सुरेंद्र से। हाँ, जब हमारे शरीर से एक रोम से एक पसीने की बूंद के अंदर इतने जीव हो सकते हैं, तो भगवान के पसीने की, भगवान के शरीर के एक छिद्र से पूरा ब्रह्मांड निकले तो कौन सी बड़ी बात है। गर्ग संहिता में लिखा है, गर्ग आचार्य जो भगवान श्री कृष्ण के यदुवंशियों के पुरोहित हैं, वो कहते हैं ब्रह्मा जी जब शंकर आदि देवताओं को लेकर एक बार ब्रह्मांड जो भौतिक जगत जहां सब समाप्त होता है उसमें एक सोराख वामन देव के पांव से हुआ है, उसके अंदर से ऊपर जाके गोलोक में पहुंचे, तो दरवाजे के ऊपर गोलोक के भगवान की गोपी सखियां सैनिक खड़ी थी, आगे नहीं जाने दिया। कौन हो? उनसे पूछा कौन हो? उनसे कौन हो हा? हमको कौन हो पूछती हो? ये ब्रह्मा, ये शंकर, ये विष्णु? तो बोलती ऐसे ब्रह्मा शंकर विष्णु हर एक ब्रह्मांड में है, और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड में एक शंकर जी है, एक विष्णु और एक ब्रह्मा है, तो आप कौन से ब्रह्मांड से आए हो? तब विष्णु ने कहा, सुनो सुंदर गोपी, हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जिसमें वामन देव के चरण से, वामन देव के राइट फुट के अंगूठे से होल हुआ था, और हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जिसमें भगवान पृष्णी गर्भा ने अवतार लिया था। बोला हाँ अब ठीक हो, और तब जाके श्री कृष्ण को कहा कि वो ब्रह्मांड से शंकर जी और ब्रह्मा जी और विष्णु आए हैं। तो ऐसे तो द्वारका में ब्रह्मा जी गए थे श्री कृष्ण को मिलने, तो दरबार ने पूछा कि कहां से पधारे? बोला ब्रह्मा हूं, ब्रह्मांड से आया हूं, चार मथे बाते वाला। तो वो हंसने लगे, बोला यहां तो कभी 25 वाले आते हैं, कभी 50 वाले आते हैं, कभी 100 वाले आते हैं, तो बोला आखिर कौन से ब्रह्मांड से आए हो? तब जब उसने परिचय दिया, भगवान ने अंदर बुलाया, तो श्री कृष्ण ने थोड़ी देर के लिए सारे लोगों से ब्रह्मांड बुलाए, और ब्रह्मा जी देख के आश्चर्यचकित हो गया, मैं तो सिर्फ चार सर है मेरे, लेकिन ये देखो असंख्य सरों वाले ब्रह्मा कितने आ गए हैं। तो हम बात कर रहे थे विष्णु के अंदर एक तो उसके रोम रोम के कोप से एक ब्रह्मांड निकलता है, और तीसरा गुण क्या है? अचिंत्य शक्ति, एक दूसरा ब्रह्मांड निकलता, तीसरा अवतारावली बीजम, सारे अवतार भगवान नारायण विष्णु से आते हैं, जितने भी अवतार आते हैं वो सारे विष्णु तत्व है, विष्णु से आते हैं। और चौथी बात क्या है? हत अरि गत, हत अरि, अगर शत्रु को भी मारेगा तो गति देगा, उसको भी मोक्ष कर दे देगा, मारेगा जिसको उसका भी भला करेगा। ये विशेष एक भगवान नारायण की, विष्णु की विशेषता है कि जिस शत्रु को मारता है उसको भी मुक्ति मिल जाती है। शत्रु के ऊपर कृपा करे, ऐसे कहावत है, अच्छा जो करता है उससे अच्छाई तो सब करते हैं, लेकिन जो बुरा करे उसका भी भला करे वो भगवान। अच्छे से अच्छाई तो दुनिया करती है, यू डू गुड आई विल डू गुड, बट यू डू बैड बट स्टिल आई विल डू गुड, ये तो केवल भगवान या भगवान के भक्त कर सकते हैं, साधारण कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये चौथा गुण है, हत अरि गत दयाल दायक, और फिर ये चार कहकर गुण, पांचवा गुण, ये चार हो गया ना, पांचवा आत्मा राम, भगवान अपने आप में परिपूर्ण है, कुछ बाहर से उनको सुख के लिए चाहिए नहीं, बाहर से कुछ उनको जरूरत नहीं है, वो अपने आप में आत्मा राम है। आत्मा राम और दूसरा शब्द है आपत काम। आत्मा राम का मतलब अपने आप में आनंद लेने वाला, किसी बाहर से आनंद की आवश्यकता नहीं है। साधु भी ऐसे होते हैं जो इस स्तर के ऊपर होते हैं। आत्मा राम गुणाकर्षत्या अमी कृष्ण। दूसरी क्या विशेषता उनकी है ये सुनिए, बहुत सुंदर विशेषता है। चार कौन से हो गए? सर्वशक्तिमान एक, दूसरा अचिंत्य शक्ति, कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, दूसरा तीसरा अवतार सब उनसे निकलते हैं, और चौथा शत्रु को भी मुक्ति देते हैं, और पांचवा सुन लीजिए, ऐसे मुनि जैसे सुखदेव हो, सनक सनातन आदि ऋषि हो, जो आत्मा राम मुनि हैं, जिनको किसी से कुछ नहीं लेना है, उनको भी आकर्षित कर लेते हैं, उनको भी अपने भक्ति और प्रेम में लगा लेते हैं। ये भगवान विष्णु की विशेषता है। और जब सनक आदि ऋषि ब्रह्मा जी के पहले चार पुत्र जो 5 साल से बड़े कभी होते नहीं है और सबसे बड़े हैं, वे कुंड के दरवाजे पे गए, जय विजय ने जाने नहीं दिया। भगवान जैसे आए विष्णु, उनके चरणों में लगी हुई तुलसी और जो सैंडलवुड का पेस्ट था, चंदन था, उनकी सुगंध आते ही ब्रह्म आनंद में आत्मा राम चार मुनि विष्णु की भक्ति के महान भक्त हो गए। सुखदेव महाराज श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनते हुए वन को छोड़कर भागवत सीखने के लिए आया। तो ये पांचवा गुण नारायण में होते हैं, वैकुंठपति में होते हैं, और ये सारे गुण 550 और 555 वो तो होते ही हैं, ये 60 हो गए, ये नारायण तक होते हैं। और ये तो कृष्ण में है ही, लेकिन चार और गुण कृष्ण में है जो और किसी में नहीं है। नारायण तक हम पहुंचे, 60 गुण हो गए, चार और गुण हैं जो श्री कृष्ण में है और किसी में नहीं है। और ये आप सुन लीजिए चार गुण। पहला है सर्व अद्भुत अद्भुत चमत्कार लीला कलोल वारिधि। इतनी अद्भुत भगवान ने लीलाएं की हैं कि उन लीलाओं को आज आप 5000 से अधिक साल हो गए सुनने के लिए घर से थाली में प्रसाद लेके आ रहे हैं। ये भगवान की मनोहर लीला है। कैसी? बाल बन के बैठा है, जो दुनिया के जगत का पिता है वो आज बेटा बन के बैठा है और आपको कहता है मुझे झूले में झुलाओ। जो सबका पिता है, पिता हम अच्छे जगतो, जो सबका पिता है वो ऐसी सुंदर लीला करता है, छोटा बच्चा बन के आपको आज एक दिन अपने को प्रेम करने का अवसर देता है। कितना बड़ा, हर एक आके ऐसी माँ यशोदा की तरह प्रेम से झूला रही है, ये भगवान की कितनी मधुर लीला है। कितनी अद्भुत लीला श्री कृष्ण की है कि अर्जुन के सारथी बने हैं, अर्जुन ऊपर बैठा है और भगवान श्री कृष्ण नीचे बैठा है। ऐसा भगवान कहीं दुनिया में, ऐसी लीला भगवान की नहीं मिलेगी, किसी शास्त्र में नहीं मिलेगी, किसी और स्थान पे नहीं मिलेगी। ये श्री कृष्ण की अद्भुत लीला है कि अपने भक्त को अपने से ऊपर बिठा देते हैं। नंद बाबा कहता है कन्हैया मेरे पादुका तो ले आओ, मेरे चप्पल तो ले आओ लकड़ी वाले। कन्हैया सर के ऊपर ऐसे उठा के ठुमक ठुमक करके लाते हैं। गोपियां कहती है कन्हैया तेरे को जरा सी छाछ पिलाएंगी, तुम जरा ठुमका मार के दिखाए, तो कन्हैया नाचने लग जाता है। ऐसा प्रेमी भगवान कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी अद्भुत लीला है जो दुनिया सारी जिसकी माया के बंधन में पड़ी है, उस मायापति भगवान को यशोदा बैठ के रस्सी से बांध लेती है। ऐसा भगवान अद्भुत लीला करने वाला, जिसकी कलोल लीला ऐसी है कि उसको याद करके 5000 सालों से, कार्तिक में आप देखना पूरा महीना आप लोग दीप लेके ऐसे भगवान को अर्पण करते हैं और दामोदर कृष्ण बांधे हुए कृष्ण की पूजा करते हैं। और दूसरी भगवान श्री कृष्ण की विशेषता जो नारायण में भी नहीं है वो क्या है? अतुल्य माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडल, सदा भक्तों से घिरे हुए रहते हैं। गैया चराने जाते हैं तो गोपियों के साथ घिरे हुए हैं, और गोपियों के बीच में है तो रास मंडल में घिरे हैं, घर में है तो बड़े गोपियों के बीच में बैठे हुए हैं, और इतना प्रेम करते हैं कि उनके अंदर से जैसे आपके बाहर बादलों से बरसात गिरती है ना, ऐसे भगवान से प्रेम के फुहारे निकलते हैं। वो प्रेम पुरुषोत्तम है जैसे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। वो प्रेम के भंडार हैं, और इतना प्रेम करते हैं कि एक बार कोई उन्हीं की तरफ देख ले तो फिर उनको दुनिया कभी दिखाई नहीं देती, कभी दुनिया उसको याद भी नहीं आती। एक बार कोई जी भरकर श्री कृष्ण की सुंदरता को देख, प्रेम को देख ले, वो प्रेम के परवाने हैं। प्रेम के लिए छोटी सी कथा आपको एक मिनट की बताता हूं। श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ द्वारका में चौपट रान खेल रहे थे चौरस, और कृष्ण हारने लगे। तो रुक्मणी कहते, अभी कभी हारते नहीं, आपको क्या हो गया? बोला, मेरा मन रांद में नहीं है इस वक्त। तो भगवान का भी मन कभी विचलित होता है। हाँ, आपका मन रांद में नहीं है, गेम में नहीं है, कहाँ है? बोला, एक मुझे भक्त बुला रहा है। बोला, जल्दी करो, दारुक को बुलाओ, अपने रथ के ऊपर चढ़ो, वहां जाओ। बोला, उधर बहुत इमरजेंसी है, रथ पहुंच नहीं पाएगा। बोला, गरुड़ को बुलाओ। गरुड़ तो हनुमान, गरुड़, वायु और मन, इनकी गति तो सबसे तेज है। बोला, गरुड़ भी वहां पहुंच नहीं पाएगा। बोला, इतनी इमरजेंसी है तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हो, वहां से उतर के चले जाओ। जैसे परीक्षित की रक्षा की थी, उतरा के गर्भ में चले गए थे ना। बोला, वहां से भी पहुंचना मुश्किल है। और तब बातें कर रहे थे, इसी जन्म में बोला, नहीं नहीं अब मैं जा रहा हूं, पहुंच जाऊंगा। बोला, कौन भक्त है, अब कौन सा साधन मिल गया है कि वहां पहुंच जाओगे? तब श्री कृष्ण कहने लगे, वो द्रौपदी है, सभा में खड़ी है, दुशासन उसके चीर छीन रहा है, वो राजा को देख रही है, पांडवों को देख रही है। तब तक तो कोई साधन वहां तक पहुंचने वाला नहीं था, अब उसने हाथ ऊपर किए हैं और आंखों में आंसू लेके मेरे को बुला रही है। ये आंसू जो आंखों से गिरते हैं, टीयर्स, ये ऐसा व्हीकल है जो मुझे अभी का अभी वहां पहुंचा देगा। अरे, भक्त के जो आंसू गिर जाते हैं तो भक्त खींचा, भगवान उसके पास खींचा हुआ आता है, इतना प्रेम करता है कि फिर अपने घर में नहीं रुक सकता। तो भक्त के आंखों से गिरे हुए आंसू भगवान के पास पहुंचाने का कोई केस्ट पॉसिबल है? भगवान का दारुक का रथ तो ऐसे है जैसे ट्रेन में जाओ, गाड़ी में जाओ, और भगवान का गरुड़ ऐसे है जैसे भाई एयर जाओ। लेकिन परमात्मा के रूप में तो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन फिर भी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान को प्राप्त करना है तो आंखों से दो चार आंसू गिरा लो। दुनिया के लिए कितना रोए हो, बच्चों के लिए रोए हैं, प्रेमियों के लिए रोए हैं, पैसे के लिए रोए हैं, घर दुकान मकान के लिए रोए हैं, अरे परमात्मा के लिए, भगवान के लिए दो आंसू कभी आंखों से गिरे हैं तो समझ लो भगवान आपके दिल से ऐसे निकल के आपके सामने हर एक आंसू में दिखाई देगा। जैसे भगवान के भक्तों को आंसू में भगवान नाचते हुए दिखते हैं, इसलिए उनका रोना भी कीर्तन है। ये माध्यम भगवान के लिए प्रेम से कभी आंखों से दो आंसू गिरे, ये भगवान की दूसरी विशेषता है कि वो प्रेम से खींचे आते हैं। और तीसरी क्या है? त्रिजगन तीनों लोक, त्रिजगन मानस मन को आकृषि मुरली कलकुजता। बांसुरी जो श्री कृष्ण के हाथ में है, तीनों लोकों को ऐसे आकर्षित करती है कि उनको सब भूल जाता है कि वो कहाँ है, किधर है। ये बांसुरी किसी और अवतार के पास कभी नहीं होती, वैकुंठ में नारायण के पास भी नहीं है। ये बांसुरी विशेष कृष्ण की एक अद्भुत वेणु माधुरी है। इस माधुरी के समान और किसी के नहीं। और चौथा बात, वो पांचवी आपको चौथी बताएं, चार ही एक्स्ट्रा है। चौथा क्या है? आत्मा ऊर्ध्व रूप श्री विसमापित चरा चर। इतना रूप उनका सुंदर है, इतना रूप उनका मधुर है कि जो चलते हैं वो खड़े हो जाते हैं, और जो खड़े हैं वो चलना लग जाते हैं। चराचर जगत उनसे मोहित हो जाता है। इतना अद्भुत श्री कृष्ण का रूप है, इतना अद्भुत श्री कृष्ण का रूप है कि स्वयं श्री कृष्ण अपने रूप को जब अपने घर में लगे हुए जो 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 रत्नों का जड़ित खंभा है उसमें देखते हैं, उसको देख के देखते रह जाते हैं, और कहते इतना सुंदर, अगर मैं राधिका होती तो इसके साथ विवाह कर लेती। ये भगवान श्री कृष्ण अपने रूप से इतने आकर्षक होते हैं, और यही कारण है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में श्री कृष्ण की ये चार विशेषताएं और बता रहे हैं। तो अब आपको हमने बताया विश्व भर में जो बर्थडे है इस वक्त दुनिया के हर एक देश में, हर एक देश के महानगरों में आज मनाया जा रहा है कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों की ओर से, और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल इसका लाभ ले रहे। इतना बड़ा बर्थडे किसी यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट का भी नहीं हो सकता, इसलिए ये भगवान है श्री कृष्ण। किसी ने बुलाया नहीं, अपने आप लोग आते हैं। कभी लोग कहते हैं एक ऐसी लोगों की गैदरिंग होती है कुंभ मेले में, दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग कुंभ मेले में होती है और कोई इनविटेशन नहीं होती है, और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल जस्ट पोरिंग इन। ये दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है, आने वाले जनवरी 14 से 12 साल के बाद लगने वाला कुंभ मेला लगने वाला है प्रयागराज में, इलाहाबाद में। 28 जनवरी से लेकर फरवरी तक चलेगा कुंभ मेला। इन्यूमरेबल ह्यूमन बींग्स, सिर्फ सर दिखाई देंगे और कुछ नहीं दिखाई देगा। नदी के अंदर कोई शहर नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, सिर्फ ये रिवर का बेड है, उसके अंदर 100,000 लोगों के रहने के लिए गांव पूरा सिटी बन जाता है, विथ एवरी फैसिलिटी टेम्पररी फॉर 2 मंथ्स। तो हमारा आज आपको ये संदेश है, श्री कृष्ण 64 गुण 16 कला संपूर्ण परिपूर्ण आज के दिन 5,300 साल पहले भारत में मथुरा में प्रकट होके वृंदावन में गए। 10.5 से 11 साल तक वृंदावन में लीला की, और फिर 16-17 साल तक मथुरा में रहे, और फिर 80 साल के करीब द्वारका में रहे। कृष्ण की लीला वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में। द्वारका में कृष्ण की लीला पूरण पूरण, मथुरा में कृष्ण की लीला पूरणतर, वृंदावन में कृष्ण की लीला पूर्णतम। ये इसको कैसे समझेंगे, गुड बेटर बेस्ट। द्वारका पूरण गुड, मथुरा पूर्णतर बेटर, वृंदावन पूर्णतम। एक ही कृष्ण है लेकिन तीन जगह में भाव अलग है। वृंदावन में जो कृष्ण का लीला है उनसे ये शास्त्र भागवत परिपूर्ण से भरा हुआ है। हमने आपको विनती की कि ये हमको जानकारी इस दुनिया के लिए, इस भारत वर्ष के पृथ्वी के एक छत्र सम्राट राजा एम्परर परीक्षित की कृपा से मिली है, जिसके ऊपर भागवत का अवतार हुआ। भागवत भगवान श्री कृष्ण का अवतार है और भागवत के अंदर ये सब अच्छी तरह से वर्णित है। और भागवत पुस्तक को श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषा में, जो पूरी दुनिया पढ़ सके, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक दुनिया जब सोती है तब प्रभुपाद जी जाग के उसको अंग्रेजी भाषा में सारे पूर्व आचार्य साधु महात्माओं के मत को जोड़कर दुनिया के उद्धार के लिए लिखा है। ये भागवत उनका इस दुनिया को कृष्ण प्रेम का संदेश इतना अद्भुत है, और कलयुग में आप सबको कृष्ण से मिलना है तो भागवत भगवत गीता, कल हमने आपको कहा था भगवत गीता कृष्ण से अभिन्न है। आपको उदाहरण देके बताया था अर्जुन आचार्य का, आज हम आपको बता रहे हैं कि कृष्ण और भागवत अभिन्न है। और तीसरी बात अब सुन लीजिए, और यहां हम कथा को समाप्त करने जाएंगे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कल युग में भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के अंदर अवतार लिया है। आप यहां से जाओ आज तो अपने साथ कृष्ण को ले जाओ, और कृष्ण आपके साथ चला जाएगा। कैसे, अपने नाम के रूप में। नाम नामी अभिन्न, भगवान का नाम और भगवान के अंदर कोई अंतर नहीं है। कृष्ण परिपूर्ण है, उसमें सारी शक्तियां भरी हुई है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान आपके नाम में आपकी सारी निज शक्तियां आपने भर दी है, जिनका अभी 64 शक्तियों का वर्णन किया, ये सारी की सारी भगवान के नाम में भरी हुई है। बस केवल ये भगवान हमारी जगह पे खड़े होकर, इस एक मानव की जगह पे खड़े होकर क्या कह रहे, सुनिए। नाम नमामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापित नैमित सुमरणे न काल। कोई आपने नाम जपने के लिए नेम टेम नहीं रखा है, आधी रात को, सुबह को, शाम को, कभी भी जब चाहो तब जपे, कोई भी जपे, काला गोरा छोटा मोटा कोई भी जपे, किसी को मना नहीं। नाम नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापित नैमित सुमरणे न काल। एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि। कितनी कृपा की है भगवान आपने, एक तो बहुत सारे नाम रख दिए, गोविंद, गोपाल, माधव, राम, अच्युत गोविंद, इतने नाम आपके हैं, और फिर हर एक नाम में आपने अपनी सारी शक्तियां भर दी और उसको जपने के लिए कोई नेम टेम नहीं रखा। दुर्दैव विद्रशम मिहाजनी नानुराग। मेरा दुर्भाग्य है कि इस नाम को लेने के लिए मुझे आकर्षण नहीं है, मुझे अटैचमेंट नहीं हो रही है, मैं इसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहा हूं। तो भगवान अपने वाणी के रूप में भागवत में और भगवत गीता में श्री कृष्ण अवतार है। रामायण का मतलब है राम अयनम यस्य स रामायण, जिसने राम जी विराजते हैं वो रामायण है। रामायण राम जी का घर है, उसमें जाओगे तो राम जी मिलेंगे। जितने कांड हैं वो कमरे हैं, एक कमरे में जाओगे तो सीता जी मिलेगी, एक में जाओगे तो भरत मिलेगा, एक में जाओगे तो हनुमान मिलेगा। तो जितने कांड हैं वो कमरे हैं और रामायण राम जी का घर है। ऐसे भागवत भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, भागवत है श्री कृष्ण का अंग। और फिर तीसरा, भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। पुस्तक साथ सदा साथ नहीं ले जा सकते हो, हर वक्त पुस्तक को पढ़ने का टाइम भी नहीं मिल सकता है, लेकिन जीवन तो आपके साथ है, नाम तो किसी वक्त भी जप सकते हो। और चौथा, भगवान का अवतार है प्रसाद के रूप में। प्रसाद भगवान की कृपा है, प्रसाद का मतलब है भगवान की कृपा, और ये प्रसाद भगवान से इनसेपरेबल है, प्यूरिफाइंग है। ये प्रसाद दो ही चीजों के द्वारा अभयचरणार भक्ति विदान स्वामी शिल प्रभुपाद ने पूरे विश्व के अंदर ये, इसने ऐसे ऐसे आज 100 मिलियन से ज्यादा पंडाल पूरे विश्व में बने हुए हैं और मिलियंस पीपल आज प्रसाद खा के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सारे विश्व के अंदर कृष्ण कृपा का प्रचार मैंने दो ही चीजों के द्वारा किया, एक तो प्रेम से नाम का कीर्तन किया और आने वालों को बड़ी उदारता के साथ भगवान के प्रसाद को खिलाया, इन दो से पूरे विश्व में मैंने इस स्थान का प्रचार किया है। तो ये दो चीजें आज आप अपने साथ ले जाइए और जन्माष्टमी आपके जीवन की उस दिन होगी जिस दिन वो श्री कृष्ण जो पहले वसुदेव के मन में, फिर देवकी के मन में, फिर दोनों के सामने खड़े हो गए, आपके मन में भी एक दिन कृष्ण को ऐसे प्रकट होना है। और जिस दिन हुआ उस दिन आपकी जन्माष्टमी है, तब तक आप जन्माष्टमी मनाते रहे, लेकिन आपके जिस दिन हृदय में श्री कृष्ण प्रकट हुए उस दिन आप श्री कृष्ण के हो गए। और उसके लिए आपको भगवान का नाम जपना है, भगवान का कीर्तन करना है। बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम।